समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
सभी श्रोताओं को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे का क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तित्व को भी हम याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुस्तबा। एक बार फिर सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार दिव्या, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स। एंड यस, इट्स सो मी सायरा एंड माय वेरी प्रिटी को होस्ट दिव्या आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं। एंड ऑफ कोर्स वी विल बी ट्रू टू द स्पिरिट ऑफ द शो, बिकॉज हम लोग करते हैं देश की परिक्रमा, जाते हैं यू नो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड सी व्हाट इंटरेस्टिंग स्टोरीज आवर कॉरेस्पोंडेंट्स हैव फ्रॉम देयर। एंड ऑफ कोर्स व्हाट एल्स टू लुक फॉरवर्ड टू, वेल my co-host Divya has already told you, but yes, the last segment is much sought after, we know that very very well. So kuch bahut hi khaas hastiyan hain jinko aaj hum log yaad karenge. And but first let's start with the news headlines. President Draupadi Murmu says cyber crime and climate change are new threats to human rights, calls for equitable digital environment to protect the rights and dignity of all.
संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध के कारण दिन भर के लिए स्थगित।
पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू अर्जेस कोऑपरेशन फ्रॉम ऑल ऑपोजिशन पार्टीज, रीइटरेट्स गवर्नमेंट्स इंटेंट टू इंश्योर अ प्रोडक्टिव पार्लियामेंट्री सेशन।
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा का निधन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया।
एंड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह टू को-चेयर इंटर रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन मीटिंग विद हिज रशियन काउंटर पार्ट इन मॉस्को टुडे। And yes, of course, now it's time for Dateline India, our segment in which we talk about some important topics of national and international interest. And today, of course, is World Human Rights Day, a very, very important day to remind each one of us that human rights and ensuring human rights, protecting human rights of not just ours, but also ensuring that our brethren get their share of human rights. I think that's the need of the hour.
बिल्कुल, आज 10 दिसंबर है सायरा, और आज के दिन मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा थी उसको स्वीकार किया गया था। तो इस पर मदर टेरेसा ने भी कहा है कि मानवाधिकार सरकार द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार नहीं है, वे मानवता के आधार पर प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है। और साथ ही मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि किसी भी जगह का अन्याय हर जगह के न्याय के लिए खतरा है। तो यानी कि मानवाधिकार जब तक सब जगह एक समान रूप से लागू नहीं होंगे, एक समान रूप से सब मनुष्यों को नहीं दिए जाएंगे, तब तक दूसरे जो पड़ोसी देश हैं कहीं ना कहीं उनके लिए भी खतरा रहेगा।
एब्सोल्युटली, एंड सिर्फ पड़ोसी देश की क्या ही बात करें, अपने ही देश की अगर हम लोग बात करें दुनिया में, यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग, यू नो, इफ यू जस्ट लिफ्ट अप योर आईज और मे बी जस्ट अ चांस लुक एट द न्यूज़पेपर्स, आई थिंक एवरीवेयर वी see more news of where, you know, the human rights are brutally being curbed of innocent children, of women, and that is just, you know, I think we have a long way to go, but nonetheless kehte hain ki jab jaago tab savera, and that's why probably this day is celebrated every year on 10th of December. And Eleanor Roosevelt, Divya, who is known as the mother of human rights, she said that the building of human rights will be one of the foundation stones on which we would build in the world an atmosphere in which peace could rule. And she's often referred, as I said, to as the mother of human rights for her pivotal role in drafting the Universal Declaration of Human Rights, which led to the establishment of Human Rights Day.
और मानवाधिकारों की जो सार्वभौम घोषणा है वो हम सभी को मजबूत करती है। घोषणा में जितने भी शामिल सिद्धांत हैं वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि 1948 में थे। इसमें यह भी कहा गया है सायरा कि हमें अपने और दूसरों के अधिकारों के लिए खड़े होने की जरूरत है। हम अपने दैनिक जीवन में भी उन अधिकारों को बनाए रखने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं जो हम सभी की रक्षा करते हैं और इस तरह सभी मनुष्यों के बीच संबंधों और जुड़ाव को बढ़ावा देते हैं मानवाधिकार। दिसंबर 1948 में यूनेस्को पहली संयुक्त राष्ट्र एजेंसी थी जिसने सार्वभौमिक घोषणा को अपने सभी कार्यों के केंद्र में रखा। शिक्षा और मीडिया के माध्यम से दुनिया में इसे बढ़ावा दिया गया।
Absolutely, and human rights are moral entitlements that every individual in the world possesses simply in virtue of the fact that he or she is a human being. In claiming our human rights, we are making a moral claim, normally on our own government, that you cannot do that because it is a violation of my moral sphere and my personal dignity. And in fact, it reminds me of our capital recently because we all were, you know, gasping for fresh breath and fresh oxygen. तो एक basic ये भी हमारा एक human right है, तो that you know that our governments ensure that
there
is no pollution.
और इसके लिए Supreme Court ने भी कहा था government को कई बार कि भाई ये moral जो normal human rights हैं उनका violation हो रहा है कहीं ना कहीं, तो आप ये जीने के अधिकार में आता है, तो इसको बिल्कुल.
So that's why no one, no individual, no government can ever take away our human rights. And take away तो खैर तब की बात होती है जब आपके पास ऑलरेडी कोई चीज हो, तो पहले तो आपको वो देना, इंश्योर करना दैट यू हैव दोज ह्यूमन राइट्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
जी बिल्कुल सायरा, और मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति की मानवता की रक्षा और संरक्षण के लिए जरूरी है ताकि हर व्यक्ति सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके और एक बेहतर इंसान बनने के योग्य जीवन जी सके, और इसीलिए मानवाधिकार हम सबके लिए जरूरी है। ये राज्य प्रदान नहीं करता है बल्कि वे केवल मानव होने के कारण हर किसी के हैं और हर जगह हैं। वे नस्ल, लिंग, राष्ट्रीयता या मान्यताओं से परे हैं, सभी के लिए अंतर्निहित समानता और गरिमा सुनिश्चित करते हैं। मानवाधिकार इन अधिकारों में मौलिक अधिकार शामिल हैं, जैसे कि मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 3 द्वारा निर्धारित जीवन का अधिकार, और साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुंच जिसके द्वारा मनुष्य अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकता है और बेहतर जिंदगी प्राप्त कर सकता है और दूसरों के लिए बेहतर मौके सृजित कर सकता है, अपने लिए बेहतर जिंदगी सृजित कर सकता है।
यस, इनफैक्ट यू नो द यूडीएचआर इज एक्चुअली द मोस्ट ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट व्हिच इज अवेलेबल इन मोर देन 500 लैंग्वेजेस। और अगर आपको याद हो कि इस सीजन के कौन बनेगा करोड़पति के में भी ये क्वेश्चन आया था, दैट व्हिच इज द मोस्ट वाइडली ट्रांसलेटेड टेक्स्ट, सो दैट इज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। एंड ऑफ कोर्स ह्यूमन राइट्स आर इक्वल, indivisible and interdependent. Human rights are you know, they mean that the fulfillment of one right often relies on others. For example, the right to education is crucial for exercising political rights such as voting in elections. Similarly, the right to health and access to clean water or clean air, they are vital for the right to life and dignity. Isi ki baat abhi hum log kuch der pehle kar rahe the, isn't it? And understanding this interconnection is very essential and important in addressing complex global issues. Tackling one area can lead to progress in others, such as gender equality or poverty reduction, while ignoring even one right can create a ripple effect, harming individuals and communities in multiple ways. In fact, kai baar jaise hum log apni government ko kehne lagte hain ki ye hamara right hai, but we should also look within ki hum log
kartavya kya hai hamare,
hamare kartavya hai, duties, but even we are, you know, probably holding somebody else's human rights. For example, especially in metro cities, ek bahut hi aam chalan hai. Even though child labor is banned constitutionally and legally, we see that many families, they employ children. And agar aap unse kahe to are iska to iske father ne isko disown kar diya tha, ya father iska, you know, was alcoholic, hum to isko khana de rahe hain, isko achhi isko school bhi bhejte hain, to school bhi bhejte hain, that bhi should
bhi,
go away.
Exactly. If your entire अधिकार है,
yes, so if your entire intention is to make a person dependent, you know, independent and probably have a good life, then you should not treat that person as a domestic help.
और अपने आसपास मुझे लगता है हम लोग ऐसा अगर कुछ भी देखते हैं, ये हर नागरिक का, एक हर भारतीय का ये अधिकार है कि अपने आसपास अगर आप ऐसा देखते हैं कि मानवाधिकारों का किसी का उल्लंघन हो रहा है,
yes,
और वो व्यक्ति अवेयर नहीं है उतना, आप अवेयर हैं तो आप उसके लिए आवाज उठाएं।
yes, तो लिए, लेकिन इंसान की फितरत हमेशा इंसान जैसी ही रहेगी, वो ये कि हम लोग अपने अधिकारों के लिए तो लड़ते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम भी किसी को अधिकार दे रहे हैं. एंड अपने से हमेशा से ये रीत रही अनफॉर्चुनेटली कि इंसान हमेशा अपने से कमजोर को ही दबाता है. सो आई जस्ट गेव यू एन एग्जाम्पल ऑफ यू नो एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन. डू वी एक्चुअली कॉल यू नो आस्क आवर चिल्ड्रन टू सर्व अस जस्ट बिकॉज वी गिव देम यू वी आर यू नो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ब्रेड बटर और एजुकेशन. वी डोंट डू दैट. देन व्हाई डू वी हैव टू गिव दिस एक्सक्यूज एंड प्रॉब्ली अब्सॉल्व आवरसेल्फ ऑफ द यू नो गिल्ट के नहीं मैं तो उसको एक अच्छी लाइफ दे रहा हूँ, हम उसको स्कूल भी भेजते हैं. सो दैट्स व्हाई आई हैव द होल राइट कि मैं उसे पोछा भी लगवा लूँ, मैं उसे घर के काम भी करवा लूँ, विच इज वेरी सैड. बट आई एम श्योर अगर हम लोग की आवाज कुछ लोगों तक पहुंच रही है, इट्स आवर अपील दैट प्लीज प्लीज जितना हो सके आपके हिस्से में जो है दूसरों के ह्यूमन राइट्स जिनको आप अपनी तरफ से रोक रहे हैं उसको प्लीज खत्म कीजिए.
बिल्कुल. और सायरा, मानवाधिकार केवल अमूर्त विचार नहीं है जबकि बल्कि कई घोषणाओं, अनुबंधों और विधेयकों के माध्यम से वे कार्रवाई योग्य मानक बन गए हैं. द्वितीय विश्व युद्ध के अत्याचारों से जन्मा और 1948 में अपनाया गया मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा UDHR सार्वभौमिक मानव अधिकारों का दुनिया का पहला व्यापक बयान था. अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून की नींव के रूप में UDHR के 30 लेख समानता और स्वतंत्रता से लेकर यातना से सुरक्षा तक प्रमुख स्वतंत्रता की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं और 80 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संधियों को प्रेरित किया है इन्होंने. नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविदा और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविदा के साथ मिलकर ये मानवाधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय विधेयक बनाता है.
That's true. And we know that the states have obligations, but individuals have support. And all states have ratified at least one of the 9 core human rights treaties as well as one of the 9 optional protocols. This means that states have obligations and duties under international law to respect, protect and fulfill human rights. At the same time, human rights treaties offer a framework for individuals and communities to demand the fulfillment of their rights and advocate for change.
और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत गरीबी उन्मूलन, भूख उन्मूलन और युवाओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए नीतियों को लागू करके दुनिया के सामने एक बेहतरीन उदाहरण के रूप में खड़ा है. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत ने अपनी 5000 वर्षों से अधिक की सभ्यतागत विरासत के साथ लंबे समय से सहानुभूति, करुणा और एक सामंजस्यपूर्ण समुदाय के भीतर व्यक्तियों के परस्पर जुड़ाव के मूल्य को बरकरार रखा है. और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है. तो सबसे पहले सायरा, हम कहाँ चल रहे हैं परिक्रमा में?
Well, in our journey of Parikrama, we first head towards the northeast. The beautiful state of Mizoram is home to various types of flora and fauna. And along with the scenic beauty of the state, different types of flora and fauna have enriched the state. And देखते हैं क्या खास खबर है हमारे correspondent की वहाँ से.
With the aim of empowering the women folks who are engaged in floriculture, a 4-day-long winter flower festival was recently held at Vanapa Hall in the heart of Aizawl City. The festival, organized by Pangparzur Association PPZA, has attracted hundreds of visitors. Mizoram is famous for florists who are emerging and have attained considerable development into the beautification of their surroundings through the flowers and plants that they grow. These flowers and exhibitions and fairs are a great platform for florists to promote an opportunity to sell and display their various flowers. According to PPZA member Pizorini, a large number of people attended the 4-day winter flower festival. According to her, many families rely on the sale of flower for their livelihood, and the event also benefit the participants.
The purpose mainly is to create festive atmosphere to the public, because winter is coming up and Christmas is coming up and everybody is in that festive mood already. So this, I think, organizing this fair will give that purpose. We think that's why we create this.
There are around 60 to 70 members with the Pangparzur Association PPZA, and the flower festival is conducted every year. Different varieties of flowers are exported from Mizoram each year. Mizoram is home of rich variety of flora and fauna distributed in its lush green, diversified terrain with steep slopes separated by rivers rolling towards north and south. For Parikrama, this is Isaac from Akashvani, Aizawl.
और अब चलते हैं देश के पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय की एक अनूठी योजना के बारे में आज आपको बताएंगे। स्थानीय निकाय केवल स्ट्रीट लाइट, बिजली और जलापूर्ति के लिए ही नहीं होते, लोगों के जीवन पर प्रभाव डालने वाली कई योजनाएं ये निकाय चला सकते हैं। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा संभाग की जालना नगर निगम ऐसी ही स्थानीय निकायों में से एक है। एक रिपोर्ट।
दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय उपजीविका अभियान के तहत जालना नगर निगम द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती है, जिनमें से एक है सैनिटरी पैड्स का उत्पादन। यहां उत्पादित सैनिटरी पैड्स की डिमांड न सिर्फ आसपास के जिलों से बल्कि दूसरे राज्यों से भी हो रही है। नगर निगम की एडिशनल कमिश्नर प्रियंका राजपूत ने इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी दी।
जालना शहर महानगर पालिका के ओर से डे एनुअलम के तहत महिलाओं को रोजगार निर्मिति के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और उनको रोजगार के लिए कामकाज दिया जाता है। उसके तहत हमारे यहाँ सैनिटरी नैपकिन्स तैयार की जाती है और हमारे यहाँ की सैनिटरी नैपकिन्स उनकी जो कीमत है वो भी इतनी कम है कि उनकी डिमांड है। कम से कम 30,000 सैनिटरी नैपकिन्स की बिक्री हो चुकी है। सातारा, वाशिम, वर्धा, चंद्रपुर, ये महाराष्ट्र के जिले और महाराष्ट्र के बाहर भी MP, गुजरात, देहरादून, तेलंगाना तक हमारे ये प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं।
वाकई जालना नगर निगम की ये पहल अभिनंदनीय है। इस स्थानीय निकाय ने दूसरी निकायों के लिए एक आदर्श उदाहरण कायम किया है। परिक्रमा के लिए बाबा साहब मस्के के साथ छत्रपति संभाजी नगर से मैं हर्षवर्धन दीक्षित।
And now from the western part of the country, we now head towards the south. In Telangana, all arrangements are in place for the grand finale of the 7th edition of the Smart Innovation Hackathon. These events are part of the national event that is to be held across the country tomorrow and day after. And the south, वैसे भी कह सकते हैं कि जो information technology उसका hub है, isn't it? So let's hear more from our correspondent.
The ingenious minds shortlisted for the grand finale of Smart Innovation Hackathon are ready to compete and tackle real-world challenges through their innovation and creativity at the IIT Hyderabad and Vardhaman College of Engineering in Hyderabad. About 400 enthusiasts will work on problems relating to agriculture, crop disease management, marketing, ocean data, and many more during the 36-hour-long hackathon. Talking to Akashvani News and hosting the SIH event for the first time, IIT Hyderabad Director Professor B.S. Murthy observed that it is a transformative initiative by the Government of India that bridges the aspirations of India's youth with the nation's vision for Viksit Bharat 2047. He also said the SIH is a dynamic platform that fosters innovation, entrepreneurship and creative problem-solving critical drivers for shaping the future of education and industry.
The theme for this particular hackathon is on agriculture. Okay. 26 teams from various institutes all over the country are visiting IIT Hyderabad, and the total number of participants are expected to be about 200. And this, the most interesting part of this is that the hackathon will go on for 36 hours non-stop. That really test the endurance of the students and the team.
While the problem statements at the IIT Hyderabad focus on agriculture and other related sectors, the teams compete at the Vardhaman College of Engineering will tackle with the challenges relating to earth sciences and ocean data beside other allied subjects during the challenge. Vardhaman College of Engineering Principal Dr. J.V.R. Ravindra informed Akashvani News that the participants came from different parts of the country are enthusiastically waiting for the event to take off. He said some of the earlier participants at the institute have registered their patents and also started their startups. Both participants and organizers are confident that these efforts will have a ripple effect benefiting local communities while positioning India as a global leader in innovation. With Narahari in Sangareddy, Lakshmi, Akashvani News, Hyderabad.
And now from Telangana, we now head towards the commercial capital of our country, Mumbai. In fact, Divya, agar Mumbai ka hum log jaise hi naam lete hain, you know, ya jise pehle kehte the Bombay,
ji,
to sabse pehle do tasveere, do teen tasveere hain of some historic monuments, wo to aati hain, of course, the Gateway of India, ek Taj Hotel, and I'm sure bahut se log jo hai jo Mumbai ka Chowpatti and jo monuments ki agar baat kare to usme jo GPO hai, the iconic building of the 100-year-old General Post Office. That also comes to our mind. Mm-hmm. And Ms. Vandita Kaul, the Secretary of the Postal Department, the Ministry of Communication, she made some special releases with a very interesting initiative. Kya hai wo initiative? Jante hain.
The program, held at the GPO delivery hall, where hundreds of postpersons collect, segregate and deliver thousands of letters across the southern part of Mumbai, saw a unique connection between penguins in Antarctica, the GI-tagged strawberries in Mahabaleshwar, and the Indian giant squirrel, which is the state animal of Maharashtra. Ms. Vandita Kaul, Secretary Post in the Ministry of Communication, released special postcards featuring penguins from Antarctica, which will be sent along with the 44th Indian Scientific Expedition to Antarctica. Speaking on the occasion, Miss Vandita Kaul highlighted the significance of the event.
तो मैं आमंत्रित करूंगी सभी जो इकट्ठा करते हैं डाक टिकट और जो नहीं भी करते हैं कि आके देखें कि कितना सुंदर संग्रह हमारे पास होता है.
Highlighting the Indian presence in Antarctica, Miss Kaul said,
दो जो substations हैं इंडिया के जहां हैं वहां पे actually the scientists are designated as our people also for the purpose of post. So it is more a presence of India Post there. Aur aajkal tourism bhi hai na Antarctica mein. So effectively our scientists wahan se chitti bhej sakte hain. So it's very interesting initiative.
Along with this, Vandita Kaul also released a special slogan cancellation featuring the mascot, the Indian giant squirrel, with the tagline Collect, Connect, Celebrate the Festival of Stamps for Mahapix 2025, scheduled for January 22nd to 25th at the World Trade Center, Mumbai. She urged everyone to visit the event next month and witness the vast collection of stamps held at the GPO, Mumbai. For Parikrama, this is Ankita Apte from Mumbai.
और अब वक्त हुआ है स्पोर्ट्स न्यूज का. ओडिशा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में आज सुबह पुरुष सिंगल्स के क्वालिफिकेशन दौर के शुरुआत मैच में भारतीय खिलाड़ी मानव चौधरी ने संयुक्त अरब अमीरात के मोहम्मद मुनावर को एक तरफा मैच में हरा दिया. पुरुष सिंगल्स के अन्य मैच में भारत के राजेश श्रीकर को चीन के ली यू शुआन ने हराया. मिक्स डबल श्रेणी में ओडिशा के कटक के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में खेले गए मैच में ओमान मोहम्मद और सिमरन सिंह की भारतीय जोड़ी ने अन्य भारतीय जोड़ी हरि भारती भास्करन पी और नरधाणा रविशंकर को पराजित किया.
And in the Pro Kabaddi League, Gujarat Giants will lock horns with Jaipur Pink Panthers in the 104th match of the season at the Balavari Sports Complex in Pune, Maharashtra today. The match will begin at 8 p.m. In the second match of the day, Bengal Warriors will face Bengaluru Bulls at 9 p.m. Both the teams are trailing in the points table. And now from news from the business world, well, the benchmark domestic equity indices today ended on a flat note. The 30-share BSE Sensex rose marginally by 1.5%. points to close at 81,510, while the NSE Nifty 50 was slightly down by 9 points to settle at 24,610. Aur ab waqt hai azadi ke safar ka.
Azadi ka safar Akashvani ke sang Bharat ka shandar swadhinta sangharsh aadhunik vishw ke mahantam sangharshon mein se ek hai. Akashvani aapke liye rozana la rahi hai is shandar sangharsh ki झलक.
आई एम राजगोपाल आचारी एंड आई एम स्पीकिंग फ्रॉम द ग्रास ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन. आई हैव बीन गिवन द ऑनर ऑफ इनॉग्रेटिंग दिस हिंदुस्तान आकाशवाणी इन मद्रास.
आप सुन रहे थे स्वाधीनता सेनानी और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और इस पद पर रहे एकमात्र भारतीय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, जिन्होंने मद्रास ऑल इंडिया रेडियो के शुभारंभ के अवसर पर ये उद्गार व्यक्त किए थे.
द न्यू आकाशवाणी इज इंटेंडेड टू कवर नॉट ओनली द सिटी ऑफ मद्रास बट द डिस्ट्रिक्ट्स इन द प्रोविंस. इट विल ब्रॉडकास्ट मैसेजेस एंड प्रोग्राम्स फ्रॉम आउटसाइड द प्रोविंस एंड इवन फ्रॉम कंट्रीज अब्रॉड.
राजा जी के नाम से लोकप्रिय राजगोपालाचारी का जन्म 10 दिसंबर 1978 को तोरापल्ली में हुआ था. वे महात्मा गांधी के विश्वस्त नेता थे.
उन्होंने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से विधि की उपाधि ली और सेलम में आपराधिक मुकदमों में वकालत शुरू कर दी. 1917 में सेलम की नगरपालिका के अध्यक्ष बनने के बाद उनका सार्वजनिक जीवन शुरू हुआ. गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने वकालत छोड़ दी। उसके बाद राजा जी पूरी तरह स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्पित हो गए।
उन्होंने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, वायकाम सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। जब महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी मार्च शुरू किया तो राजगोपालाचारी ने मद्रास प्रेसिडेंसी के वेदारण्यम में नमक कानून तोड़ा। स्वतंत्रता संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए उन्हें 5 बार जेल भेजा गया।
1937 में मद्रास में चुनावों के बाद कांग्रेस मद्रास प्रेसिडेंसी में सत्ता में आई और राजा जी प्रेसिडेंसी के प्रथम प्रीमियर निर्वाचित हुए। राजगोपालाचारी 1939 में मंदिर प्रवेश प्राधिकार और क्षतिपूर्ति अधिनियम लाए, जिसके तहत तथाकथित निम्न जाति के लोगों को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति मिली।
राजा जी मद्रास से संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। वे विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी नियुक्त किए गए।
राजगोपालाचारी प्रसिद्ध लेखक भी थे, जिन्होंने भारतीय अंग्रेजी साहित्य में अविस्मरणीय योगदान दिया। उन्हें कर्नाटक संगीत शैली में कुरई ओनरम इल्लई गीत लिखने का श्रेय भी हासिल है। उनके सर्वाधिक लोकप्रिय साहित्य में महाभारत और रामायण का अंग्रेजी भाषा में लेखन भी शामिल है। भारतीय राजनीति और साहित्य में योगदान के लिए राजा जी को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 25 दिसंबर 1972 को राजा जी का निधन हो गया।
आज हम स्वाधीनता सेनानी वीर नारायण सिंह को भी स्मरण कर रहे हैं, जो 10 दिसंबर 1857 को शहीद हुए थे। नारायण सिंह को बहुत से लोग छत्तीसगढ़ से प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी जानते हैं। उन्होंने 1857 में छत्तीसगढ़ से भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी।
नारायण सिंह का जन्म 1795 में छत्तीसगढ़ के सोना खान क्षेत्र में हुआ। व्यापारियों को लूटने और उनका माल अकाल पीड़ित गरीबों को वितरित करने के लिए 1856 में अंग्रेजों ने नारायण को गिरफ्तार किया था, लेकिन 28 अगस्त 1857 को वे जेल तोड़कर अपने गृहनगर पहुंच गए। वहां नारायण ने 500 लोगों की सेना बनाई।
सेना को कुचलने के लिए शक्तिशाली ब्रिटिश फौज भेजी गई। अंग्रेजों ने नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया और 10 दिसंबर 1857 को रायपुर में उन्हें फांसी दे दी गई। रायपुर में शहीद नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम उन्हीं के याद में रखा गया है। महान स्वाधीनता सेनानी वीर नारायण सिंह को शत शत नमन।
और अब समय है उन व्यक्तित्व को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि, और इस क्रम में हम सबसे पहले याद करेंगे अशोक कुमार। आज के दिन ही हिंदी फिल्मों के चमकते सितारे अशोक कुमार ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। अशोक कुमार अभिनेता के साथ साथ निर्माता, निर्देशक और गायक भी थे। हिंदी सिनेमा के युग पुरुष कुमुद कुमार गांगुली उर्फ अशोक कुमार को एक ऐसे अभिनेता के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने उस समय प्रचलित थिएटर शैली का अंत करके 6 दशकों तक अपने बेहतरीन अभिनय से सिने प्रेमियों को रोमांचित किया। इन्हें दादा मुनि के नाम से भी जाना जाता है। अशोक कुमार ने 300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया।
कन्हैया लक्ष्मी, गाड़ी वाले जरा रोको, रोको।
मामा जी,
जीती रहो बेटे। कन्हैया मुझसे नाराज है, ये तेरा माधव है लेकिन चिकनी मिट्टी का। अपनी तपस्या ऐसी से मजबूत आदमी बना देना बेटे, इंकार न करना, इसी काम पर गया।
अशोक कुमार को वर्ष 1999 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया और 1988 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
रेलगाड़ी, 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 छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, लोहे की सड़क, लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ।
And today is the birthday of Rati Agnihotri. We all know her very memorable role in the cult tragedy film Ek Dooje Ke Liye. There's another beautiful song that is picturized on her. Let's listen to that.
Mujhe tum yaad karna aur mujhko yaad aana tum. Mujhe tum
और इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने पसंदीदा कार्यक्रम परिक्रमा को ऐसे ही याद करते रहेंगे, मुझे और सायरा को दीजिए अनुमति परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार।